Star Radio Exclusive Podcasts।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।
लॉकडाउन पॉजिटिव देश भर के कथक कलाकारों के साथ आज देश में सब है बंद, सड़कें बंद, गलियां बंद, भीड़ भाड़ के चौराहे बंद, नुक्कड़ में बैठे लोग नहीं हैं, गलियों में कोई शोर नहीं है। नजरें उठाकर देखो जरा, प्रकृति कितनी मगन खड़ी है। आज कहीं भय, कहीं सुरक्षा, कहीं कानून का वास्ता है, लेकिन हर क्रिएटिव इंसान के मन में आज भी एक आशा है। प्रकृति का वही पुराना स्वरूप आज देखने को मिल रहा है। हमको हमारा बचपन याद आ रहा है। घरों में हम रचनात्मक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं, अपने बच्चों को अपना बचपन दिखा रहे हैं। ऐसे में देश भर के कथक कलाकारों ने कैसे बिताया अपना ये समय, क्या किया क्या नहीं किया, इस संदर्भ में हम दो कड़ियां प्रसारित कर चुके हैं और आज आपके साथ हैं तीसरी कड़ी लेकर। और तीसरी कड़ी में सबसे पहले हैं हमारे साथ बोकारो से निर्मल्यो शर्मा, जो लॉकडाउन की शुरुआती स्थिति में इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उन्होंने इस स्वर्णिम अवसर को बहुत ही खूबसूरत और रचनात्मक तरीके से गुजारा।
दूर तलक है सोना फलक, अब ढूंढे तुझको कहाँ, तू है किधर ना आई नजर। यस, राइट नाउ आई एम सिटिंग देयर इन माय बालकनी, आई डोंट फाइंड एनीवन इन द एज मच आई कैन सी बिकॉज द पीरियड इज लॉकडाउन। वी ऑल नीड टू बी देयर विद इन दिस फोर वॉल्स एंड दिस इज एक्सपेक्टेड राइट नाउ ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सिचुएशन कॉज्ड बाय वायरस कोरोना COVID-19। वी आर अंडर लॉकडाउन सिचुएशन एंड for which initially really I was not ready to accept this, but looking to the devastating condition we have to accept this lockdown period, but it's really a suffocating situation for those who are going out every day for their job, for the daily work, but for the safety of their own families, for the entire nation, we need to be locked down ourselves, and that's what expect from others too. But emotionally I'm very down to see the situation of many in thousands of homeless people, animals, and I think God will definitely save them. But I think that's a basic ethics of life, that we have to move with the sense of charaibeti charaibeti. Life has to move on. So in order to fulfill that, we have to motivate ourselves and we have to move forward to the positivity. So right now and during this period, I motivate myself very much toward this positivity and trying to motivate others too, because maybe today is like this, tomorrow will be everything okay. Hoping to this, I design my daily schedules, like more of exercises, more of practicing my dance, discussing with friends over phone about the dance literature, more intricate part of dance, so that we rejuvenate with the lessons to each other, to shape other in this my own field. And moreover, I love to create and rather recreate the things. I love to create paintings, handcraft, and cooking too. And above all, I'm planning so much for tomorrow. Tomorrow is not a single day. Tomorrow is a big span of life. So when everything will be get over soon and everything will be all okay, so that time we can move out and say, during this lockdown period, we did not stop ourselves. We did not stop our thinking. We did not stop anything to move forward. So that here we are ready today. Wish as early as possible, these dark days will get over and we will be able to get back into our own normal work, normal life. We'll meet each other, we'll meet our friends, we'll meet our family members. So hoping to this and looking forward to this, stay home, stay safe.
बोकारो झारखंड के डीपीएस स्कूल में डांस टीचर निर्मल्यो शर्मा ने अपनी बात मत भावुकता के साथ बहुत अच्छे से हमारे साथ साझा की। देश भर के कथक डांसर्स ने जो अपनी बातें हमें कह भेजी हैं, उन सब में एक बात है, सबकी बातों में विभिन्नता होते हुए भी एक सामान्य बात है और वो है रचनात्मकता की, सकारात्मकता की, इस समय को ऐसा बिताने की कि वो हमेशा यादों में बस जाए। सतना मध्य प्रदेश से प्रीति सिंह हमारे साथ हैं, जो एक शिक्षिका भी हैं और एक छात्रा भी हैं। उन्होंने इस लॉकडाउन को अनुशासन के साथ जीने का लक्ष्य बनाया और इस अनुशासन के कारण वो बहुत कुछ ऐसा कर पा रही हैं जो बाकी के समय में नहीं कर पाती हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुखी जीवन के लिए निरोगी काया एवं शांत चित्त बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वह कोई कलाकार हो या किसी अन्य फील्ड का हो। ये अचानक जो वक्त मिला उसे मैंने सोचा क्यों ना अनुशासन के साथ बिताया जाए। अनुशासन कुछ ऐसा कि जिसमें सबसे पहले सुबह योगासन, प्राणायाम और कुछ वक्त मेडिटेशन करने में फोकस करती हूँ, जो कि नॉर्मल दिनों में उतना व्यवस्थित तरीके से हो पाना मुश्किल है कहीं ना कहीं भाग दौड़ की वजह से। इन दिनों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कथक में लगाने का प्रयास है और मुझे लगता है सिर्फ मेरा नहीं, हर कलाकार इस प्रयास में होगा कि अपने कला को किस तरह से वो बढ़ा सकता है, कैसे उसका सही उपयोग कर सकता है। जिसमें सुबह मैं 2 से 3 घंटे रियाज करती हूँ, जैसा कि मेरी गुरु के आदेश से 21 दिन हर रोज़ 108 आवर्तन लगाने का संकल्प है तो उसे पूरा कर रही हूँ, और शाम को 1 घंटा अपने कथक की पुस्तकों को पढ़ती हूँ। आने वाले कार्यक्रमों के लिए खुद को और तैयार करने की कोशिश है और मैं मानती हूँ कि ये 21 दिन खुद के अंदर झांकने के, खुद की कमियों को ढूंढकर उसमें काम करने, सुधार लाने के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत सही हैं। मैं भी अपने कमज़ोर पहलुओं को समझ के अपने रियाज में उसे रोज़ सुधारने की कोशिश में हूँ। अपनी गुरु विद्या देवी से इन दिनों मिल पाना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी हर रोज़ कुछ ना कुछ सवाल होते हैं, कुछ सीखने की इच्छा होती है, तो आज की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए ऑनलाइन क्लासेस का भी सहारा लेती हूँ फिलहाल के लिए। मैं भी कुछ बच्चों को कथक सिखाती हूँ और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि उन्होंने मुन्ने बच्चों को कैसे कथक के प्रति आकर्षित कर सकूँ। उसके लिए भी इस समय कुछ नए प्रारूप बनाया है, जैसे ही क्लासेस शुरू होंगी सिखाने की कोशिश करूँगी। सच कहूँ तो लाइफ में पहली बार ऐसा वक्त मिला जब बिना किसी प्रोग्राम के बारे में सोचे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना के लिए वक्त दे पा रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा फिर से कार्यक्रम शुरू होंगे, नए नए आयोजन शुरू होंगे और हम सब कलाकार फिर उसी एनर्जी के साथ, फिर उसी उत्साह के साथ उतरेंगे। यही ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी स्वस्थ रहें, सभी सेफ रहें, समाज को हम अपनी अपनी कला के माध्यम से सेवाएं प्रदान करते रहें। धन्यवाद।
प्रीति सिंह ने तो अपने समय का बहुत उपयोग किया रचनात्मक गतिविधियों में, अपने आप को अनुशासन में बांध कर अपने आगे के कार्यक्रमों के लिए इनडायरेक्ट तैयारी भी की। लेकिन नवी मुंबई की श्वेता पारेख के साथ इस दौरान कुछ अलग हुआ। वो यूं जितना समय दे पाती थी कथक को, इस समय उससे ज्यादा देना चाहती थी, लेकिन उनको घर के कामों में, बच्चों और परिवार को समय देने में इतना वक्त गया कि उन्हें रियलाइज हुआ कि हम कितना ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। उन्हें यह अनुभूति हुई कि ये समय फिर आए ना आए, लेकिन परिवार को समय देना इस वक्त उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी। लेकिन फिर भी उन्होंने समय निकाल कर वीडियो क्लासेस भी ली और महाराज के वीडियो लेक्चर्स भी देखे और इस नई टेक्नोलॉजी को सीखा जिसमें वो अब तक परफेक्ट नहीं थी।
जब ये महामारी नहीं आई थी उसके पहले मुझे लगता था कि क्या लाइफ है, रोज़ वही क्लासेस, मॉर्निंग क्लास, इवनिंग क्लास, वही घर का काम, मेरे खुद के लिए मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। फिर जैसे ही ये अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन करना पड़ेगा, मेरे पास फुल डे की मेड है, मॉर्निंग टू इवनिंग तीन तीन मेड्स घर पे काम करती हैं। तो जैसे ही अनाउंस हुआ सोसाइटी में मेड्स को लेना सब बंद कर दिया, फिर मुझे लगा चलो कोई बात नहीं, यही अच्छा टाइम है फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। तभी मैंने कथक के जितनी भी महाराज जी की ऑडियोज थी, वीडियो और जो बुक्स थी वो सब निकाली कि शायद इनको पढ़ के और थोड़ा अच्छे से हमारा जो नॉलेज है वो आगे करना पड़ेगा इसी फील्ड में। दो तीन दिन तक काफ़ी ट्राई किया कि टाइम मिल जाए कुछ पढ़ने के लिए, लेकिन मॉर्निंग टू इवनिंग, इवनिंग भी नहीं बोल सकते, रात तक वही घर का काम करते करते करते, और फिर लास्ट में तो ऐसा लगता है बस बहुत हो गया, अभी टाइम ख़त्म हो गया आज का। और बच्चे फैमिली घर पे तो उनका रूटीन पूरा कि ये बैक टू बैक ये चाहिए वो चाहिए, मम्मा ये बनाओ वो बनाओ। तो कहीं ये मैंने रियलाइज़ किया कि हम लोग कितना दूसरे पर मैं डिपेंड थी फैमिली से, और दूसरी साइड में ये भी हुआ कि मेरी और बच्चों की बाउंडिंग बहुत अच्छी हो गई इस टाइम पे। उनके साथ खेलना, उनकी छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना और उनके साथ बैठ के खाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। बट अगर कथक व्यू से देखा जाए तो धीरे धीरे वो जितना मेरे पहले रूटीन में मैं अपना फॉलो कर रही थी वो उतना इस टाइम पे कर नहीं पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड एक फैमिली सपोर्ट भी ज़रूरी था। हस्बैंड घर पे बिजनेस का इतना प्रेशर रहता है लेकिन इस टाइम पे वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनके साथ जो मुझे टाइम मिलता था, जो थोड़ा टाइम लगता था कि शायद मैं पढ़ के इसको आगे कर लूँगी, लेकिन वो मुझे उनके साथ स्पेंड करना पड़ा। और फिर धीरे धीरे जो मुझे कंप्यूटर में बिल्कुल इतना नॉलेज नहीं था, वीडियो क्लासेस वगैरह मेरी बेटी के साथ बैठ के मैंने वो सब सीखा। 5-6 दिन के बाद ही चालू हुआ कि यहाँ सब टीचर्स ने वीडियो क्लास लेना चालू कर दिया, मेरे पेरेंट्स के क्वेश्चंस पे क्वेश्चन आने लगे, मैम आप वीडियो क्लास चालू करिए। तो वापस एक नया रूटीन बना मेरा, सुबह से शाम घर का काम, फिर शाम को मेरी वीडियो क्लासेस, फिर हस्बैंड फैमिली के साथ, पूरा ही रूटीन चेंज हो गया है। लेकिन हाँ, रात को सोते सोते जो छोटी छोटी तिहाइयाँ, छोटे छोटे बोल जो बनते, वो उसका मज़ा कुछ अलग आया। ये वैल्यूबल टाइम आगे फ्यूचर में कभी आएगा या नहीं आएगा वो नहीं पता, बट इस टाइम पे मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट करना ज़्यादा लगा। एज अ कथक डांसर तो है ही, लेकिन फैमिली ज़्यादा इसमें मुझे मेरी प्रायोरिटी देनी पड़ी, हस्बैंड को ज्यादा सपोर्ट करना पड़ा।
नवी मुंबई की श्वेता पारेख की दिल से कही गई बातें दिल को छू गईं। और अब हम मिलते हैं कोलकाता की शोमाली रॉय से, उनका लॉकडाउन कैसे बीत रहा है आइए सुने।
जब पूरे विश्व में इस कोरोना वायरस की जैसे एक भयानक महामारी, दर्दनाक एक खौफ फैल रहा है, जिसमें पता चलने से पहले ही, कुछ कर पाने से पहले ही सब कुछ खराब हो जा रहा है, हमारे इसमें मैं अपनी कुछ एकांत अनुभूति शेयर करना चाहती हूँ। बचपन से मैंने सुना था, अक्सर बोला जाता है कि आर्टिस्ट कुछ भी आर्ट के साथ युक्त, कला के साथ युक्त, कुछ भी विषय के साथ जो लोग रहते हैं उन लोगों का वार्ता सबसे जल्दी ईश्वर के पास पहुंचता है, और उन लोगों के आत्मा के साथ परमात्मा का जो योग है वो बहुत जल्दी बन जाता है, और मैं मन से ये मानती हूँ। तो इस बीच में मुझे लगता है सारी दुनिया में हम लोग देख रहे हैं, एक एक दिन सुबह उठ के हम लोग जब खबर खोलते हैं तो बस यही नज़र में आ रहा है, आज भी ये संख्या बढ़ गया, आज भी जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं और भी संख्या बढ़ रहा है। मन में मेरा एक यही लगता है कि शायद इन्हीं लोग में कोई ना कोई हम लोगों के परिचित भी है, ये भी हो सकता है परिचित ना भी हो, लेकिन जिनके परिवार में ये बीमारी एक बार आ रहा है, कितना दर्द, कितना भयंकर उनका परिस्थिति हो रहा है। तो मेरा ये बहुत मन से है कि चाहे इकोनॉमिकली हो या मुझसे जितना हो सके मैं क्यों उसके पास ना खड़ी रहूं, या फिर हम सारे डांसर्स मिलके एक नृत्यांगना होने के नाते मैं ये सोचती हूँ कि जो भी हम लोग आर्ट के साथ युक्त हैं, सब लोग हाथ में हाथ रख के मिल के इन लोगों के पास क्यों नहीं खड़े हो सकते। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने शैली को, अपना अपना विषय को और ज़्यादा हाईलाइट करके कुछ भी सोशल वेबसाइट में हम लोग एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ तो तुम भी करो, और कुछ अपना डांस का पोस्ट कर रहे हैं। अभी क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग, हम लोग चाहेंगे कि अपने विषय में रहने का और भी ज़्यादा करके हम लोग प्रैक्टिस रियाज करना चाहते हैं, क्रिएशन में रहना चाहते हैं, ये ठीक है। लेकिन क्यों ना वो क्रिएशन ऐसा कुछ हो जिससे हम लोग विश्व को ये मैसेज दे सके कि इतनी दर्दनाक परिस्थिति में भी हम लोग ईश्वर के पास प्रे कर सकते हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, और ह्यूमन बींग्स को यही करना चाहिए।
कोलकाता की शुमाली रॉय की बातें सुनकर ऐसा लगा कि वो दिल से कलाकार हैं, और कलाकार बहुत भावुक होते हैं। उनकी भावुकता उनकी बातों में टपक टपक के ये कह रही थी कि इंसानियत यही है कि हम इस संकट काल को दूसरों के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो करके गुजारें। और उनकी इस अनुभूति को, उनकी इस फीलिंग को हम सब रचनात्मक लोग अंदर से महसूस कर सकते हैं। और अब हमारे साथ हैं कथक कलाकार वाराणसी की संगीता सिन्हा।
कलाकार जो व्यस्त जिंदगी में अपनी साधना, अपनी जिज्ञासा नहीं पूरी कर पा रहे थे, इस खाली समय पे सारे कलाकार सोशल मीडिया के माध्यम से, मैंने देखा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, महाराज जी से लेके कई सारे कलाकार एक जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इस तरह से समय भी अच्छा व्यतीत हो जा रहा है, और हम आशा करते हैं कि ये लॉकडाउन का जो समय है वो अच्छे से बीत जाए और हम नई ऊर्जा के साथ फिर से एक दूसरे से मिल पाएँ। तो मैं सबसे आग्रह करूँगी कि लॉकडाउन का जो पीरियड है उसमें घर में रहें, सेफ रहें, ताकि स्वस्थ रहें।
संगीता सिन्हा जी के विचार अभी हमने सुने, जो वाराणसी की एक कथक कलाकार हैं, और उन्होंने आज की नई तकनीक के सहारे जो आपसी मेल भाव सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे कलाकारों का आपस में हो रहा है उससे बहुत खुशी जाहिर की है। यही खुशी जाहिर की है पंडित बिरजू महाराज की पोती रागिनी महाराज ने भी। उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही हैं, आइए सुनते हैं इनकी बात।
इस समय जो क्वारंटाइन का पीरियड चल रहा है, बहुत सारे लोगों को इस तरह के विचार आए कि उनका काम रुक गया है इत्यादि, बहुत सारी चीजें जो उनका घाटे में चला गया। लेकिन मैं बहुत ही एक अलग तरीके का विचार रखती हूँ इस क्वारंटाइन पीरियड के लिए। विचार मेरे इस प्रकार हैं कि हम सारे आर्टिस्टों को, जब हम लोग अपने कार्यक्रम में बिजी रहते हैं और अमूमन हम लोग बहुत ट्रैवल भी करते हैं और डांस क्लासेस लेते हैं, चाहे वो म्यूजिक क्लासेस लेते हों बाकी लोग, तो इस समय हम लोगों को अपने आप से मिलने का समय नहीं मिल पाता है। एक आर्टिस्ट को हमेशा एक एकांत की जरूरत होती है जिसमें वो अपने आप से बात करे और अपनी अंदर की कुछ क्रिएटिविटी को इन्हेंस करे, अगर मैं सही शब्दों में बोलूं तो उस क्रिएटिविटी को ढूंढने का और उसको इन्हेंस करने के लिए ये जो लॉकडाउन हुआ है ये बहुत ही लाभदायक रहा है। और सोशल मीडिया बहुत ही यूजफुल है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे आर्टिस्टों ने अपने रियाज करने का ढंग, अपने तोड़े टुकड़े और परने इत्यादि, अपना म्यूजिक, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं उनके थ्रू शेयर किया है। तो मैं समझती हूँ कि इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है कि घर पर रहने के बावजूद लोग घरों से अपने काम कर रहे हैं। और मेरे लिए बहुत ही अच्छा ये एक ब्रेक रहा जिसमें मैं अपने गुरु के साथ, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं महाराज जी के साथ उन्हीं के घर पे रहती हूँ, तो मुझे उनके साथ आमने सामने खड़े होकर ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का समय मिला। और रोज़ मेरी जिस प्रकार करेक्शन होती है वो मेरे लिए बड़ी लाभदायक रहती है। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं, बहुत सारे लोग नए नए चैलेंजेस के थ्रू फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे सब कनेक्ट हो रहे हैं, तो इससे ये भी पता चल रहा है कि जो हमारे आगे के जो जनरेशन है, जो लोग, उन लोगों के अंदर भी इतना टैलेंट है कि वो लोग भी कुछ अलग प्रकार के बोलों के साथ वो भी आ रहे हैं।
रागिनी महाराज, जो पंडित बिरजू महाराज की पोती हैं, वो सचमुच बहुत भाग्यशाली हैं कि इस क्वारंटाइन पीरियड में अपने गुरु, अपने दादाजी पंडित बिरजू महाराज जी के साथ आमने सामने रोज प्रैक्टिस कर पा रही हैं। भविष्य है वो देश का और आने वाली पीढ़ी पर भी है उनकी नज़र। अपने आप को इस क्वारंटाइन पीरियड में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश की है और इसका फल उनको भविष्य में जरूर मिलेगा।
नमस्कार, मैं डॉक्टर शताब्दी आचार्य, गौरी नृत्य की कलाकार, कोलकाता से। आप सभी की तरह मैं भी अभी घर में बंद हूँ, पर सच कहूँ तो बहुत दिनों बाद मैं अपने फैमिली के साथ इतना समय बिता रही हूँ और ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर का काम, स्कूल का काम, इन सब के साथ साथ मैं और कभी कभी मेरी सासू माँ भी मेरे साथ, दोनों मिल के एक साथ नए नए डांस की कोरियोग्राफीज कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और हम दोनों को बहुत मज़ा आ रहा है। आप सब भी इस लॉकडाउन को पॉजिटिवली लें। आपके घर के कोने में जो ड्राइंग कॉपी कई सालों से पड़ी हुई है, उसे निकालने का वक्त आ गया है। आप सबके छिपे हुए टैलेंट को एक बार फिर से सबके सामने लाने का सही वक्त यही है। नृत्य, गीत, चित्रकला, अच्छे अच्छे खाने की डिशेज बनाना, जो भी आपको पसंद हो वो करें और इस टेंशन और डिप्रेशन की वातावरण को दूर रखने में दूसरों की भी मदद करें। ये वक्त है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खड़े रहने का, पॉजिटिव रहने का और ये विश्वास रखने का कि हम होंगे कामयाब एक दिन।
आज विश्व।
डॉक्टर शताब्दी आचार्य, जीवन को पॉजिटिव लेने की कितनी बड़ी कला है उनमें, जो वो अपनी सासू माँ के साथ मिलकर इन दिनों को एंजॉय कर रही हैं और नई नई कोरियोग्राफी कर रही हैं। सच, जीवन को अपनी नज़र से देखने का सबका अपना अपना नज़रिया होता है। कितने सारे लोग हैं इस समय दुनिया में जो डिप्रेशन में हैं, जो घर के अंदर चिड़चिड़ा रहे हैं कि ये कब ख़त्म होगा लॉकडाउन, ये कहाँ से चला आया वायरस। लेकिन हमें गौर करना चाहिए देश भर के इन रचनात्मक कलाकारों, कथक से जुड़े कलाकारों की सकारात्मक बातों पर। और अब सुनते हैं कि शिंजनी कुलकर्णी क्या कह रही हैं।
नमस्कार, मैं शिंजनी कुलकर्णी, कथक डांसर और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी की नतनी हूँ। मुश्किल होता है हम लोगों के लिए घर बैठ पाना इतने लंबे समय के लिए, क्योंकि एज आर्टिस्ट्स हम लोगों को आदत होती है कि हम हर समय अलग अलग शहरों में, देश विदेश में ट्रैवल करें, शोज़ परफॉर्म करें, बड़ी संख्या में लोगों से मिलें। हर शो में 500,000 लोग करीब होते हैं जो बैक स्टेज बाद में हमसे मिलने भी आते हैं, और वही है जो हमें सबसे ज़्यादा खुशी भी देता है। पर ऐसे समय में जब सारा देश, सारी दुनिया ऐसे माहौल से लड़ रही है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को ध्यान देना चाहिए इस बात का कि हम अपना एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे सकें, जिसमें कि हम लोग अपने घर पे रहें और अपने साथ साथ अपने परिवारजनों का भी ख्याल रख सकें। सोशली स्पीकिंग, ये एक बहुत अच्छा टाइम है अपने अंदर भीतर झांकने का, अपने मन को और टटोलने का। एज आर्टिस्ट्स हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने कला की साधना में ज़्यादा से ज़्यादा समय स्पेंड कर सकें। मैं पर्सनली पहले जितना रियाज़ करती थी, उससे ज़्यादा समय बिता पा रही हूँ, और बिना इस किसी चिंता के कि मेरे कोई भी अपॉइंटमेंट्स, एंगेजमेंट्स इससे डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं। तो एक शांत मन से और बिना किसी जल्दबाजी के सारा समय मैं अपने कला को दे पा रही हूँ, जिससे मनन चिंतन और मंथन से मुझे लगता है कि कई नए ऐसे विचार आ रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, जिनको फिर मैं दर्शाना भी चाहूँगी। साथ ही साथ, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी फैल गई है जो कि हमारे जीवन के हर पक्ष को छू रही है तो उसका असर हमारी क्रिएटिविटी पे भी नज़र आ रहा है। मैंने कुछ डांस की कॉम्पोजिशंस भी ऐसी बनाई हैं जिसमें कोरोना से बचने का उपाय दिखाने की एक कोशिश है, एक प्रयास है, ताकि लोग उसको कला के माध्यम से देखें तो शायद उन तक वो मैसेज और अच्छे से पहुंच सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी तरकीबें हैं। मैं अपने डांस एंड म्यूज़िक से रिलेटेड ज़्यादा किताबें पढ़ पा रही हूँ, पुराने आर्काइवल वीडियोस देख पा रही हूँ, अपनी शुरुआती जो हम लोगों ने तालीम ली थी, लेसन्स, पुराने लेसन्स जो मैंने अपने नाना से लिए थे, उनको दोबारा से प्रैक्टिस करने का समय मिल पा रहा है, जो कि हमारे अमूमन एक जो हमारा स्केड्यूल होता है उसमें इतना समय नहीं मिल पाता है कि ये सब भी प्रैक्टिस हो पाए। तो लॉकडाउन है ज़रूर, सभी का जीवन रुक गया है, पर मेरे लिए ये एक अच्छा समय है जिसमें मैं साधना कर रही हूँ अपने कला की। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और सारा देश वापस से अपना काम शुरू करेगा तो वी विल ऑल इमर्ज एज डीपर एंड मोर मीनिंगफुल आर्टिस्ट्स।
ये थी शिंजनी कुलकर्णी, पंडित बिरजू महाराज जी की नतनी। और अब अपने विचारों के साथ हैं कानपुर की उपासना तिवारी।
आज विश्व एक भयंकर महामारी कोरोना के संकट से गुजर रहा है। निश्चय ही ये भयानक है। हम सब घरों में बंद हैं, लॉकडाउन। शायद ये शब्द मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि क्या हो सकता है, कैसा लगता होगा, लेकिन सच मानो तो तमाम परेशानी और बुराइयों को एक तरफ रख के अगर हम देखें तो आज कुछ समय के लिए हम अपने अपनों के बहुत करीब आ गए हैं। शायद इसके पहले अपनी अपनी दुनिया में खोए, सिमटे, अपनों के साथ रहते हुए भी बहुत दूर हो गए थे। आज हम सब की सुबह और रात एक साथ होती है। घर की ऊर्जा क्या है अब हमें महसूस हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि हम कितना कुछ खोते जा रहे थे। इसी प्रकार पूरा राष्ट्र भी एक साथ, एक ऊर्जा के साथ खड़ा है। एकता की ऊर्जा में कितनी शक्ति होती है ये हम महसूस कर रहे हैं। भय है परंतु बहुत शांति है, और इस त्रासदी से निकलने के लिए हमें शांत ही रहना है। बस बाकी तो ईश्वर स्वयं संभाल लेंगे। इस शांति की खोज में जो आज हम सब तरफ महसूस कर रहे हैं, ना जाने कब से भटक रहे थे। प्रकृति ने हमें स्वतः ही इस शांति से रूबरू करवा दिया। ना कहीं आना है, ना जाना है, ना कुछ पाना है, ना खोना है, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष है, ना राग है, ना प्रतिस्पर्धा है। सब कुछ थम गया है। ये प्रकृति का एक संदेश है, शांति का, पवित्रता का, जिसका महत्व अब हमें समझना होगा। जीवन में ठहराव बहुत ज़रूरी है, शायद अब हम समझ सकें। हम कलाकार बिरादरी के लोग स्वभाव से ही कोमल, भावुक और प्रसन्न प्रकृति के होते हैं। हम सबको मिलकर सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। अपनी अपनी विधाओं का अभ्यास तो करना ही है। शायद हमसे कुछ अनदेखा रह गया हो, उससे मुखातिब होने का बहुत सुंदर मौका है। आज सोशल मीडिया का युग है। हम सबको सकारात्मक और ऊर्जावान छोटी छोटी प्रस्तुतियां और संदेश देने चाहिए। अपने अपनों को प्यार और विश्वास दिलाना है कि सतर्कता और प्रेम के साथ हम इस त्रासदी से उबर जाएंगे। अपनी आस्था मजबूत रखें, हम निश्चय ही उबर जाएंगे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने प्रेम और आस्था और शांति के शस्त्र को मजबूत बना के इस लड़ाई से विजय प्राप्त करनी होगी, और हम निश्चय ही विजय प्राप्त करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ प्रणाम।
प्रणाम है आपको कानपुर की उपासना तिवारी जी। कितनी खूबसूरत परिभाषा दी है आपने लॉकडाउन की। कितना खूबसूरत कहा है आपने कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम सब एक हैं, और इस एकता के बल पर हम ये महामारी, क्या हमारे सामने कुछ भी आए हम उसको पार कर जाएंगे, जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। इसी आशा के साथ अब हमको देश भर के कथक कलाकारों के सकारात्मक विचारों की इस श्रृंखला से अनुमति दीजिए। अर्पा रेडियो आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत आभारी है कि आपने हमसे इतनी अच्छी अच्छी बातें कही। अर्पा रेडियो एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट्स।
आप सुन रहे हैं रेडियो अर्पा।